अब परीक्षाएं नजदीक थी, सब पढ़ने में लगे थे, पर रिया अनजाने भय से ग्रसित थी। कभी कभी उसे यूं ही रोना आता। वो सुबह उसे खूब याद है, जब अंदर बाहर दोनों ही तरफ बारिश हो रही थी। गीली आंखें और उदास हृदय आने वाले संकट का आगाह करा रहे थे। कल आखिरी पर्चा था, पेपर खत्म होते ही घर वापस आना था। इस बात पर सभी खुश थे सिवा उसके। उसके पिता उसे घर ले जाने के लिए आ गए थे। उन्होंने 2 केसर पिस्ता आइसक्रीम खरीदा और 1 रिया को थमा दिया। पिता के अकस्मात दुलार ने हिम्मत दी तो पूछ बैठी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं पापा?
बहुत।
तो क्या आप मेरी पसंद को महत्व देंगे?
कहना क्या चाहती हो?
मैं आदित्य को पसंद करती हूँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्या मेरे लिए आप उससे मिलेंगे?
हाँ, बुला लो।
इतनी बातें उनसे कह पाना आसान नहीं था। आइसक्रीम ने भी मदद की थी। उसके हॉस्टल फोन किया तो आदित्य आधे घंटे में हाजिर हो गया। उसने पापा से बात की और पापा ने आदित्य से। ऐसा लगा मानो सब आसानी से हल हो गया। अब तक बेकार ही डरती रही।
दोनों की उम्र छोटी है अभी, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर हम तुम दोनों को हमेशा के लिए एक कर देंगे।
पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर यही लगा कि उन्हें कितना गलत समझा था। मैं पूरी कोशिश करूंगा अंकल, पर अगर कुछ खास हासिल न कर पाया तो? आदित्य ने पूछा।
तो मैं कोई वादा नहीं कर सकता।
आदित्य सकते में आ था। उसके सामने अब एक ही रास्ता बचा था और वो था UPSC का। एक ही निशाने से उसे 2 शिकार करना था, एक तरफ रिया और दूसरी तरफ IAS। दोनों ही उसकी प्राथमिकताएं थीं। दूसरी ओर रिया बहुत खुश थी, पापा मान गए थे, उसे और क्या चाहिए था? प्यार का प्यारा सा सफर, जो एक दूसरे को खो देने के डर से रो रो कर गुजारी, वो एक बेवकूफी थी। उसे आदित्य और अपने सब एक साथ मिल रहे हैं, उसे यही तो चाहिए था। आदित्य उसे स्टेशन छोड़ने तक आया, वो अंत तक उसे निहारती रही, इस उम्मीद में कि अब तो रजामंदी मिल गई है तो जल्दी ही मिलेंगे। घर पहुंचते ही सारी सच्चाई सामने आ गई। पापा की वो सारी सकारात्मक बातें मिथ्या थीं, जो उसे सही सलामत घर लाने के लिए बोली गई थीं। रिया पर सख्त पहरेदारी बिठा दी गई। अब उसे किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं थी। वो अपने ही अंतर्द्वंद, तटस्थ परिवार जनों की बेरुखी और आदित्य के प्रति अपराध बोध, इन तमाम तकलीफों के साथ अपने ही घर में कैद थी और आदित्य एक अंतहीन इंतजार करता रह गया। इसके बाद दोनों ही वर्षों एक दूसरे से दूर रहे, पर उनके दिलों में नजदीकियां बनी रही। ओह, ये सब इतना आसान नहीं था, बल्कि उनके प्रेम का सफर बेहद तकलीफ दे रहा था। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, कम से कम अब सब कुछ ठीक हो रहा था। वो जैसे अकस्मात वर्तमान में लौटी तो ऐसा लगा जैसे गहरे नींद से जागी हो। यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार सब ठीक हो गया। आदित्य ने अपने जीवन का एक मुकाम हासिल कर लिया। उसकी सफलता में ही रिया का भी सुख निहित है। पिता की शर्त के अनुसार अब आदित्य उसके काबिल बन चुका है और उनके विरह के अंत का समय नजदीक आ गया है। वक्त के करवट लेते ही मनः स्थिति स्वतः सुधरने लगती है। UPSC के परिणाम के तीसरे ही दिन एक रजिस्टर लेटर आया। अब मैं आपकी बेटी के योग्य बन गया हूँ और इन 4 वर्षों में थोड़ा अनुभवी भी। क्या आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में देंगे? मैं अपने पिताजी के साथ आपके घर रिश्ते की बात करने आना चाहता हूँ। रिया ने आदित्य की लिखावट पहचान ली थी, पर उसने किसी से कुछ भी नहीं पूछा। घर में आदित्य का नाम तक लेने की इजाज़त नहीं थी, पर स्वयं गोकुलदास जी ने उसे बुलाकर आदित्य की प्रशंसा की।
बड़ा ही गुणवान है तुम्हारा आदित्य, उसने वो कर दिखाया जो मैंने सोचा तक नहीं था। उसकी अंग्रेजी इतनी उच्च कोटि की है कि मुझ जैसे अंग्रेजी के ज्ञाता को शब्दकोश खोलना पड़ गया।
वो वहीं खड़ी खड़ी सोचने लगी कि कैसा आध्यात्मिक प्रेमी है उसका आदित्य। कोई और होता तो पहले उसे पत्र लिखता, पर सच तो ये है कि वो आदित्य है जिसके निस्वार्थ प्रेम ने बिना कुछ कहे सुने सदा उसका मार्ग प्रशस्त किया है। घर में सभी खुश थे सिवा गोकुलदास जी के। वो कुछ नर्वस दिख रहे थे। क्यों ना हो, एक तो प्यारी बेटी विदा करनी पड़ेगी और वो भी उसके साथ जिसे 4 वर्ष पूर्व समझ नहीं पाए थे। सालों बाद घर में उत्सव सा माहौल था, सभी अपने कार्य में लगे थे। रिया के चेहरे की रौनक वापस लौट आई थी। वर्षों बाद आज उसे हंसते देख माँ ने उसकी नजर उतार ली। बस ऐसे ही खुश रहा कर बेटा, जिस घर में बेटियां हंसती हैं लक्ष्मी वहीं बसती हैं। गोकुलदास जी स्टेशन जाकर उन लोगों को अपने साथ लेकर घर आए। विवाह की तारीख तय हुई। अगले सप्ताह ट्रेनिंग के लिए जाना था, इसलिए 4 दिन बाद का ही मुहूर्त निकला।
इतनी जल्दी जल्दी में क्या हो सकेगा, ट्रेनिंग के बाद का कोई शुभ दिन निकालिए,
रिया की माताजी बोली। अरे नहीं, अब तक चुप बैठा आदित्य बोल पड़ा।
तब तक आपने किसी टॉपर का ऑफर स्वीकार कर लिया तो मेरी तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रिया के मामले में और रिस्क नहीं ले सकता।
उसके ये कहते ही सब ठठा कर हंस पड़े और देर तक उनकी हंसी गूंजती रही। इसी बीच आदित्य और रिया की निगाहें मिली तो अनायास ही उनकी नजरें झुक गईं। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। वो सबसे अच्छी तरह बात कर लेती है पर आदित्य से क्यों नहीं। पता नहीं क्या है उनकी उन गहरी आंखों के अथाह समुद्र में कि वो आकंठ डूबने लगती है। बड़ों के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में प्रेमी युगल सदा के लिए विवाह बंधन में बंध गए। उनके पहले प्यार की खुमारी कभी कम न हुई। रिया अपने प्रियवर की आंखों में हमेशा हमेशा के लिए खो गई। गाथा में आप सुन रहे थे आर्या झा की कहानी आध्यात्मिक प्रेम। गाथा में आपके लिए इस कहानी को प्रस्तुत किया शिफाली कपूर ने।